नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, केंद्र सरकार से रेलवे विस्तारीकरण के लिए भरपूर सहयोग के बावजूद सुक्खू सरकार नहीं कर रही सहयोग। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट को सुधारवादी व दूरदर्शी बताया। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले इलाकों में ओलावृष्टि व वर्षा से शीतलहर बढ़ी। और धर्मशाला के मैक्लोडगंज में अवैध रूप से रह रहे चीन के एक नागरिक को किया गया गिरफ्तार, जांच जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। शिमला में आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल माह से प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में 3,000 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि IGMC शिमला में जल्द ही पैट स्कैन और रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को भी मजबूत कर रही है, ताकि मरीजों को उनके घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में 300 डॉक्टरों का प्रशिक्षण और अवकाश रिजर्व कोटा बनाने के निर्देश भी दिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तारीकरण के लिए केंद्र सरकार के भरपूर सहयोग के बावजूद भी सुक्खू सरकार रेलवे के काम में अड़ंगा लगा रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में हिमाचल में रेलवे के विस्तार व सुदृढ़ीकरण के लिए 2,911 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार रेल नेटवर्क विस्तारीकरण में अपने हिस्से के काम में सहयोग नहीं कर रही है, जिससे हिमाचल में रेलवे परियोजनाएं प्रभावित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार की ये उदासीनता न तो हिमाचल के हित में है और न ही आर्थिकी व औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने की भविष्य की योजनाओं के हित में है। उन्होंने मुख्यमंत्री से राजनीतिक विद्वेष छोड़कर प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं में पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार काम करने का आग्रह किया है, ताकि राज्य में बेहतर रेल कनेक्टिविटी का सपना साकार हो सके। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों को संघीय ढांचे की भावना के विपरीत बताया है। धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की इन नीतियों से विशेष रूप से पहाड़ी संसाधन संरक्षण करने वाले राज्यों को आर्थिक संकट की ओर धकेला जा रहा है। चंद्र कुमार ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए राज्यों के अधिकारों और संघीय ढांचे की रक्षा आवश्यक है।
जो 16वां वित्त आयोग है, क्योंकि 15वें वित्त आयोग में भी जो हमें पैसा मिला और उसके साथ जो इंटरम रिपोर्ट आई, उसके आधार के ऊपर भी 11,431 करोड़ की सहायता दी गई, लेकिन 16वें वित्त आयोग का जो अभी अवार्ड आया वो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। और इससे क्या हुआ है कि जो हमारी हिल स्टेट्स हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान, क्योंकि जो हमारे खर्चे हैं वो रोजमर्रा के जो है हमारे साधन बड़े लिमिटेड हैं।
प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी व विधायक रणधीर शर्मा ने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री के विकसित व आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने का मजबूत आधार है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये बजट परम्परागत लोक लुभावन घोषणाओं वाला नहीं, बल्कि सुधारवादी व दूरदर्शी बजट है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिना तथ्यों के बजट का विरोध कर रही है, जबकि प्रदेश को पहले से कई गुना अधिक सहायता मिल रही है।
ये बजट परंपरागत बजट नहीं है, ये बजट लोक लुभावनी घोषणाओं वाला, पॉपुलर अनाउंसमेंट्स वाला ट्रेडिशनल बजट नहीं, यह एक सुधारवादी बजट है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को विकसित देश बनाने के उद्देश्य से इस बजट का प्रारूप बना है। केंद्रीय करों में बजट की बढ़ोतरी हुई, इससे अनुमान है कि केंद्र इस बार 26,21,000 करोड़ रुपए राज्यों को बांटे और उसमें से 24,550 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को आने का अनुमान।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने केंद्र सरकार से सैनिकों, पूर्व सैनिकों, बुजुर्ग व बीमार सैनिकों के लिए हमीरपुर जिले में बड़सर विधानसभा क्षेत्र के ढटवाल में एक ESM कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खोलने का आग्रह किया है। उन्होंने आज संसद में सैनिकों, पूर्व सैनिकों, बुजुर्ग व बीमार सैनिकों की समस्या का मामला उठाया। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि हमीरपुर और बड़सर में दो पूर्व सैनिक कैंटीन काम कर रही हैं, जिन पर 13,527 कार्ड धारक निर्भर हैं, जिनमें से 3,908 कार्ड धारक ढटवाल तहसील के हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दोपहर बाद से मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा हुई है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। कुल्लू जिले में सोलंग नाला, अटल टनल धुंधी व कोठी सहित अन्य स्थानों पर भारी हिमपात हो रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि आज प्रदेश के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर वर्षा व बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है, जबकि कल से मौसम में सुधार आने की संभावना है।
आगामी मौसम की बात करें तो आज 3 तारीख को जो हाई डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर है, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। साथ में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, शिमला है, मंडी, यहाँ पे एक दो स्थानों में इवनिंग समय में बारिश हो सकती है हल्की। हालांकि 4 तारीख से मौसम में कमी आएगी और 4-5 तारीख को पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। 6 तारीख को भी पूरे प्रदेश में लगभग मौसम साफ बना रहेगा।
धर्मशाला के मैक्लोडगंज में चीन का एक नागरिक पिछले लगभग 130 दिनों से बिना वैध भारतीय वीजा के पाया गया है। कांगड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीर बहादुर सिंह ने बताया कि ये चीनी नागरिक नेपाल का 90 दिनों का टूरिस्ट वीजा लेकर पहुंचा था और बिना वैध दस्तावेजों के भारत पहुंच गया। उन्होंने बताया कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वीर बहादुर सिंह ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है।
पुलिस थाना मैक्लोडगंज के अंतर्गत एक चाइनीज नागरिक के अवैध रूप से रहने की सूचना जो है वो प्राप्त हुई। उसका जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो वो बिना वीजा के यहाँ रह रहा था और फर्दर जो भी जांच की गई उसमें तो ये पाया गया पिछले करीब 5 महीने पहले नेपाल के रास्ते जो है वो भारत में प्रवेश उसने लिया था और उसके पश्चात जो है वो कुछ टाइम जो है इधर उधर घूमने के पश्चात यहाँ पे मैक्लोडगंज आ गया था और करीब 3.5 महीने से वो मैक्लोडगंज में ही रह रहा था।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, केंद्र सरकार से रेलवे विस्तारीकरण के लिए भरपूर सहयोग के बावजूद सुक्खू सरकार नहीं कर रही सहयोग। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट को सुधारवादी व दूरदर्शी बताया। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले इलाकों में ओलावृष्टि व वर्षा से शीतलहर बढ़ी और धर्मशाला के मैक्लोडगंज में अवैध रूप से रह रहे चीन के एक नागरिक को किया गया गिरफ्तार, जांच जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।